ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 17 मई 2026 के लिए है। विषय नश्वर और अमर, स्वर्णपथ, भजन संहिता। हे यहोवा, मैंने तुझे पर भरोसा रखा है। मैंने कहा, तू मेरा परमेश्वर है, मेरे दिन तेरे हाथ में हैं। उत्तरदायी अध्ययन, उत्पत्ति, भजन संहिता, अय्यूब। आदम की वंशावली ये है। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब यारद 162 वर्ष का हुआ, जब उसने हनूक को जन्म दिया, और मतूशीला के जन्म के पश्चात हनूक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं, और हनूक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई। और हनूक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लूप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धार्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा है, और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा, और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वो भोर सा हो जाएगा। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना। प्रतिकाल को तेरी करुणा और प्रति रात को तेरी सच्चाई का प्रचार करना। परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं तत के तेल से चुपड़ा किया हूँ। धार्मी लोग खजूर के नियन फूले फलेंगे, और लुबनान के देवदार के नियन भरते रहेंगे। वो यहोवा के भवन में रुपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। भजन संहिता। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है, और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है, और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम आश्चर्य के हैं, और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थीं। तेरी आंख ने मेरे बेडोल तत्व को देखा, और मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वो बालों के कनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। अब्रानियों। ये मलकिसिदक सालम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब इब्राहिम राजाओं को मारकर वापस जाता था, तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को इब्राहिम ने सब वास्तुओं का दसवां अंश भी दिया। ये पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा, और फिर शालम अर्थात शांति का राजा है, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके ना दिनों का आदि है और ना जीवन का अंत है। परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा। अब इस पर ध्यान करो कि ये कैसा महान था जिसको कुलपति इब्राहिम ने अच्छे से अच्छे माल की लूट का दसवां अंश दिया, और जब मलकेसेदक के समान एक और ऐसा दोबारा और मलकेसेदक के समान एक और ऐसा याजक उत्पन्न होने वाला था जो शरीर तक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हो, तो हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट होगा। यूहन्ना, फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो उसने पाप किया था ना उसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रगत हों। जिसने मुझे भेजा है उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। ये कहकर उसने भूमि पर थूका और थूक से मट्टी सानी, और मट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर कहा, जा शैलोह के कुंड में जाके धोले, जिसका अर्थ भेजा हुआ है। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। मरकस, फिर वो सौर अरसैदा से निकलकर देकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा, और लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वो उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ्ता, अर्थात खुल जा। और उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वो साफ साफ बोलने लगा। लूका, और देखो यायर नाम एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिरकर उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसकी 12 वर्ष की अकलौती बेटी थी और वो मरने पर थी। वो ये कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दे। यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वो बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ और किसी को अपने साथ भीतर आने न दिया, और सब उसके लिए रो पीट रहे थे। परंतु उसने कहा, रो मत, वो मरी नहीं परंतु सो रही है। वो ये जानकर कि मर गई है उसकी हंसी करने लगे। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की, उठ। तब उसके प्राण फिर आए और वो तुरंत उठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। करंथियों, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि ये नशामन दय अविनाश को पहन ले और ये मरणहार दय अमरता को पहन ले। सोहे मेरे प्रिय भाइयों, धीरड़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वेदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। भगवान की समानता में मनुष्य के रूप में विज्ञान में पता चला अमर होने में मदद नहीं कर सकता। पीड़ा, पाप, मारना, सन्मान्यताएं वास्तविक हैं। जब दिव्य विज्ञान को सर्वभौमिक रूप से समझा जाएगा तो उनका मनुष्य पर कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य अमर है और दिव्य अधिकार द्वारा जीवित है। पाप राहित आनंद, जीवन की पूर्ण सिद्ध भाव और अमरता, एक दिव्य सुख या पीड़ा के बिना असीमित दिव्य सुंदरता और अच्छाई का होना, एकमात्र सत्य अविनाशी पुरुष का निर्माण करता है, जिसका अस्तित्व अध्यात्मिक है। अस्तित्व की यह स्थिति वैज्ञानिक और शन है। एक पूर्णता केवल उन लोगों द्वारा समझ में आती है जिनके पास दिव्य विज्ञान में मसीह की अंतम समझ है। मृत्यु कभी अस्तित्व की इस स्थिति को जल्दबाजी नहीं करा सकती, क्योंकि अमृता प्रकट होने से पहले मृत्यु को दूर करना होगा, इसे प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। मन की अनंतता में सामग्री को अज्ञात होना चाहिए। कला और कषाय के प्रतीक और तत्वंत परिपूर्ण और शाश्वत सभी के उत्पाद नहीं है। प्रेम से और प्रकाश और सिद्ध भाव से, जो आत्मा के निवास हैं, केवल अच्छे के प्रतिबिंब आ सकते हैं। सुंदर और हानि रहित सभी चीजें मन के विचार हैं। मन उन्हें बनाता है और गुनाह करता है, और उत्पाद को मानसिक होना चाहिए। एक अहंकार, एक मन या एक आत्मा, जिसे भगवान कहा जाता है, अनंत व्यक्तित्व है, जो सभी प्रकार की शांति प्रदान करता है, और जो व्यक्तिगत आध्यात्मिक व्यक्ति और चीजों में वास्तविकता और दिव्यता को दर्शाता है। जब हम गलत सोच को छोड़कर सत्य को अपना लेते हैं और देखेंगे कि पाप और मृत्यु डर का ना तो कोई सिद्धांत है और ना ही कोई स्थायी चीज, तो हम सीखेंगे कि पाप और मृत्यु डर की कोई वास्तविक उत्पत्ति या सही अस्तित्व नहीं है। जैसे जैसे मनुष्य आत्मा को समझने लगते हैं, वो ये विश्वास छोड़ देते हैं कि ईश्वर के अलावा कोई सच्चा अस्तित्व है। मन सभी आंदोलनों का स्रोत है, और इसकी स्थायी और समान जैसे पूर्ण कार्रवाई के मानदता या जांच करने को जोड़ता नहीं है। मन कल और आज और हमेशा जीवन प्रेम और ज्ञान की तरह ही है। अमर मन द्वारा शासित मनुष्य हमेशा सुंदर और भावे होता है। प्रतीक सफलवश ज्ञान सुंदरिय और पवित्रता को प्रकट करता है। जीवन शाश्वत है, हमें इसका पता लगाना चाहिए और इसके बाद प्रदर्शन शुरू करना चाहिए। जीवन और अच्छाई अमर है। आइए फिर हम उम्र और तुषार की बजाय अपने अस्तित्व के विचारों को प्रेम, ताजगी और निरंतरता में आकार दें। अमरता, अमर या कषाय से मुक्त, अपनी खुद की एक महिमा है, अर्थात आत्मा की चमक। अमर पुरुष और महिला आध्यात्मिक भावना के उदाहरण हैं। पूर्ण मन से खींचे गए उन उच्च अभिधारणाओं को दर्शाते हैं जो अपनी भावतिक भावना को पार करते हैं। सौम्यता और अनुग्रह पदार्थ से स्वतंत्र हैं। मानवीय रूप से देखे जाने से पहले उसके गुण उसके पास होते हैं। सुंदरता जीवन की एक चीज है जो शाश्वत मन में हमेशा के लिए रहती है, और अभिव्यक्ति रूप, रूपरेखा और रंग में उसकी अच्छाई के आकर्षण को दर्शाती है। ये प्रेम ही है जो पंखड़ी को असंख्य रंगों से रंगता है, गर्म धूप की किरणों में झलकता है, सुंदरता के धनुष के साथ बादल को झुकाता है, रात को तारों से जगमगाता है और पृथ्वी को सुंदरता से ढांपता है। ये जानकर के आत्मा और उसकी विशेषताओं को हमेशा मनुष्य के माध्यम से प्रकट किया गया था, मालिक ने बीमारों को ठीक किया, अंधे को दृष्टि दी, बधिर को सुनना, लंगड़े को पैर दिया। इस प्रकार दिव्य की वैज्ञानिक कार्रवाई को प्रकाश में लाया। मानव मन और शरीर पर मन और आत्मा मोक्ष की बेहतर समझ दी। यीशु ने एक ही आध्यात्मिक प्रक्रिया के द्वारा बीमारी और पाप को ठीक किया। अगर ये सत्य है कि नसों में उत्तेजना होती है, कि पदार्थ में बुद्धिमता होती है, कि भावतिक जीव आंखों को देखने और कानों को सुनने का कारण बनता है, फिर जब शरीर भावतिकीकृत हो जाता है तो ये क्षमताएं खो जानी चाहिए, क्योंकि उनकी अमृता आत्मा में नहीं है। जबकि सत्य तो ये है कि सिर्फ सोच की भावतीकरण और आध्यात्मिककरण से ही इन क्षमताओं को अमर माना जा सकता है। अमर और आध्यात्मिक तथ्य इस नश्वर और भावतिक सोच से अलग मौजूद है। ईश्वर अच्छा स्वयं विद्यमान है और स्वयं अभिव्यक्त है। ध्वनि नश्वर विश्वास पर बनी एक मानसिक धारणा है। कान वास्तव में सुनता नहीं है। दिव्य विज्ञान ध्वनि को आत्मा की इंद्रियों के माध्यम से, आध्यात्मिक समझ के माध्यम से प्रकट करता है। इससे पहले के मानव ज्ञान चीजों की झूठी भावना में अपनी गहराई तक डूबा हो, भावतिक उत्पत्ति में विश्वास करते हैं जो एक मन और अस्तित्व के सच्चे स्रोत को छोड़ देते हैं। ये संभव है कि सत्य से छापी ध्वनि के रूप में अलग थी और वो ध्वनि के रूप में आदम नबियों के लिए आई थी। यदि सुनने का माध्यम पूर्ण आध्यात्मिक है तो ये सामने और अविनाशी है। यदि हनुक की धारणा उसकी भावतिक इंद्रियों के सामने सबूतों तक ही सीमित थी तो वो कभी भी ईश्वर के साथ नहीं चल सकता था और ना ही अनंत जीवन के प्रदर्शन में निर्देशित हो सकता था। नश्वर दृष्टि कितनी क्षण भंगुर है जब रेटिना पर एक घाव प्रकाश और लेंस की शक्ति को समाप्त कर सकता है, किंतु वास्तविक दृश्य या भावना खत्म नहीं होती। ना तो उम्र और ना दुर्घटना आत्मा की इंद्रियों में हस्ताक्षेप कर सकती है, और कोई अन्य वास्तविक इंद्रियां नहीं है। ये स्पष्ट है कि पदार्थ के रूप में शरीर की अपनी कोई संवेदना नहीं है तथा आत्मा और उसकी शक्तियों के लिए कोई विस्मृति नहीं है। यदि आत्मा प्राण पाप कर सकते या खो सकते तो मन की सारी क्षमताओं के साथ अस्तित्व और अमरता भी खो जाएगी, मगर जब तक ईश्वर है अस्तित्व खो नहीं सकता। आध्यात्मिक दृष्टि ज्यामितिक उच्चता के अधीन नहीं है। जो कुछ भी भगवान द्वारा शासित है वो एक पल के लिए भी बुद्धि और जीवन के प्रकाश और शक्ति से वंचित नहीं होता। इंसानी सिद्धांत इंसान को सामंजस्यपूर्ण या अमर बनाने में लाचार हैं, क्योंकि वो क्रिश्चियन साइंस के अनुसार पहले से ही ऐसा है। हमारी आवश्यकता सिर्फ ये जानने की है और असली मानव के दिव्य सिद्धांत प्रेम को अपनाना है। हमें विचार में आदर्श मॉडल बनना चाहिए और उन्हें लगातार देखना चाहिए, या हम उन्हें भव्य और महान जीवन में कभी नहीं चुनेंगे। आए विज्ञान को स्वीकार करते हैं, भाव गवाही के आधार पर सभी सिद्धांतों को त्यागें, अपूर्ण मॉडल और भ्रामिक आदर्श छोड़ दें, और इसलिए हम एक ईश्वर, एक मन और एक परिपूर्ण उत्कृष्टता के अपने मॉडल का निर्माण करने दें। भगवान के नर और मादा को प्रकट होने दें। आए हम आत्मा की दिव्य ऊर्जा को महसूस करें, हमें जीवन के नएपन में लाएं और किसी भी नश्वर और भावतिक शक्ति को नष्ट करने में सक्षम न होने को पहचानें। आए हम आनंदित हों कि हम दिव्य शक्तियों के अधीन हैं। होने का सही विज्ञान ऐसा ही है। जीवन या ईश्वर का कोई अन्य सिद्धांत भ्रम, अपूर्ण और पौराणिक है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सजाओं से बचाव करे और भूल कर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।